भविष्यद्वाणी की आत्मा, विलंब का समय और मध्यरात्रि की पुकार। हबकूक की दो पट्टिकाएं।
स्पष्टीकरण का एक वचन। हाल ही में हमने हबकूक की दो पटियाओं के प्रतिलेख को तैयार करना आरंभ किया, ताकि उसका अनुवाद हमारी वेबसाइट पर प्रस्तुत विभिन्न भाषाओं में किया जा सके। किसी मौखिक प्रस्तुति को लिखित प्रस्तुति में परिवर्तित करने का कार्य उससे कहीं अधिक कठिन है जितना कोई व्यक्ति समझ सकता है, यदि वो उन सभी जटिल चरणों से परिचित न हो जिनसे होकर एक मौखिक प्रस्तुति को लिखित प्रस्तुति में बदला जाता है, और साथ ही उस सामग्री का अंततः वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने से संबंधित आवश्यक समस्याएं भी जुड़ी रहती हैं। हमने अभी अभी 95 प्रस्तुतियों में से पहली की प्रतिलिपि संपादन प्रक्रिया आरंभ की थी, और मैंने एक और जटिल चरण का पता लगाया जिसे हमें भी पार करना होगा। इसका संबंध 1989 से लेकर हमारे वर्तमान इतिहास तक इस संदेश के क्रमिक विकास से है।
लगभग 15 वर्ष पहले की प्रस्तुतियों में ऐसी सच्चाइयां थीं जो समझ के शैशव काल में थीं। उन सच्चाइयों में से पहली जिसे मुझे स्पष्ट करना है, मिल्रवादी इतिहास में दूसरे स्वर्गदूत के आगमन से संबंधित है। उस समय मैं ये समझता था कि दूसरा स्वर्गदूत तब आया जब प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने मिलर द्वारा प्रथम स्वर्गदूत के संदेश की प्रस्तुति के विरुद्ध अपने द्वार बंद करने आरंभ किए, और ये 1843 वर्ष की समाप्ति के साथ संबद्ध था। विलियम मिलर समय की ऐसी गणना पर कार्य कर रहा था जिसके विषय में उसका विश्वास था कि वो ये पहचान कराती है कि 1843 के वर्ष 22 मार्च 1843 को आरंभ हुए और 22 मार्च 1894 को समाप्त हुए। उसने ये समझा था कि वे तीन भविष्यद्वाणियां जो अंततः दो पवित्र चार्टों पर रखी गईं 1843 के वर्ष में समाप्त होंगी, और उसका विश्वास था कि वो वर्ष 22 मार्च 1894 को समाप्त हुआ। वो दो बातों में गलत था।
दानियल 12 के 337 दिनों,
लैव्य व्यवस्था 26 के सात कालों के 2020 वर्षों और दानियल 8 के 2300 दिनों की तीन भविष्यवाणियों को मिलर ने मार्च 1844 में समाप्त होने वाली समझा था। इसके पश्चात प्रभु ने सैमुअल स्नो का मार्गदर्शन किया जिससे वो न केवल ये समझ सका कि ये भविष्यवाणियां 1843 में नहीं बल्कि 1844 में समाप्त हुईं, वरन स्नो ने समय गणना की कराइट पद्धति को भी लागू करना आरंभ किया जो वो समय प्रयोग नहीं था जिसका उपयोग मिलर कर रहा था। मिलर समय गणना की लब्बी विषु आधारित पद्धति का उपयोग कर रहा था जो वर्ष की गणना वसंत से वसंत तक करती थी।
जब हम हबकूक की दो पटियाओं को प्रस्तुत कर रहे थे तब हम इस ऐतिहासिक वास्तविकता को नहीं समझते थे, और मार्च 22, 1844 को दूसरे के आगमन तथा विलंब के समय के आरंभ के रूप में चिन्हित करने के लिए मिलर के अनुभव का उपयोग कर रहे थे। मैं समझता था और अब भी समझता हूँ कि उस स्वर्गदूत का आगमन उस समय के अनुरूप था जब प्रोटेस्टेंटों ने प्रथम स्वर्गदूत के विषय में मिलर के संदेश को अस्वीकार कर दिया था, और निम्नलिखित अनुच्छेद मेरा संदर्भ बिंदु था।
जून 1832 में श्री मिलर ने पोर्टलैंड के कास्को स्ट्रीट चर्च में अपने व्याख्यानों का दूसरा क्रम प्रस्तुत किया। मुझे इन व्याख्यानों में उपस्थित होना एक महान विशेषाधिकार प्रतीत हुआ, क्योंकि मैं निरुत्साह के अधीन आ गई थी और अपने उद्धारकर्ता से भेंट करने के लिए स्वयं को तैयार नहीं पाती थी। इस दूसरे क्रम ने नगर में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक हलचल उत्पन्न कर दी। कुछ ही अपवादों को छोड़कर विभिन्न संप्रदायों ने श्री मिलर के विरुद्ध अपने गिरजाघरों के द्वार बंद कर दिए। विभिन्न मंचों से दिए गए अनेक प्रवचनों में व्याख्याता की कथित उन्मत्ततापूर्ण त्रुटियों को प्रकट करने का प्रयत्न किया गया, परंतु चिंतित श्रोताओं की भीड़ उनकी सभाओं में उपस्थित होती थी और बहुत से लोग भवन के भीतर प्रवेश करने में असमर्थ रह जाते थे। सभाएं असाधारण रूप से शांत और ध्यानमग्न थीं। लाइफ स्केचेस 17 सेकंड।
मैंने समझा कि मिलर के संदेश के लिए द्वारों का बंद होना प्रथम स्वर्गदूत के अस्वीकार की शुरुआत को चिन्हित करता था, और समय की रब्बी विश्व आधारित गणना के संबंध में मिलर की समझ के अनुरूप मैंने ये मान लिया कि 22 मार्च 1844-1843 के समापन को चिन्हित करता था। जून 1842 में पोर्टलैंड में मिलर की प्रस्तुति वास्तव में एक मार्ग चिन्ह है जो एक प्रगतिशील अस्वीकार को पहचानता है, जिसका अंतिम निष्कर्ष 18 अप्रैल 1844 को हुआ,
परंतु प्रस्तुतियों के समय तक हम समय की कराईती गणना के सैमुअल स्नो के अनुप्रयोग को नहीं पहचान पाए थे।
जब हमने पहली प्रस्तुति का प्रति संपादन आरंभ किया, तब मैं ये देखने लगा कि उस समय जो अभिलिखित किया गया था वो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो उस बात का विरोध करता हो जिसे हम अब सिखाते हैं। ऐसा है भी और नहीं भी, ये केवल दूसरे स्वर्गदूत के क्रमिक आगमन पर दिया गया एक बल है और साथ ही इस संदेश के क्रमिक रूप से खोले जाने का भी एक दृष्टांत है, जैसा कि मिलरवादी इतिहास में भी हुआ था। स्पष्टीकरण की ये टिप्पणी उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो 19 अप्रैल 1844 को प्रथम मिलरवादी निराशा के रूप में हमारी पहचान तथा अतीत में जो सिखाया गया था उसके कारण ठोकर खा गए हैं।
पहला और दूसरा संदेश 1843 और 1844 में दिए गए थे और अब हम तीसरे के प्रचार के अधीन हैं, परंतु तीनों संदेशों का अब भी प्रचार किया जाना है। अब ये उतना ही आवश्यक है जितना पहले कभी था कि वे उन लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत किए जाएं जो सत्य की खोज में हैं। लेखनी और वाणी के द्वारा हमें इस घोषणा को सुनाना है, उनके क्रम को और उन भविष्यवाणियों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हुए जो हमें तीसरे स्वर्गदूत के संदेश तक पहुंचाती हैं। पहले और दूसरे के बिना तीसरा हो ही नहीं सकता। इन संदेशों को हमें संसार को प्रकाशनों में, प्रवचनों में देना है, भविष्यवाणी के इतिहास की रेखा में उन बातों को दिखाते हुए जो हो चुकी हैं और जो होने वाली है। सिलेक्टेड मैसेजेस, बुक 2, 104।
हबक्कूक की दो पट्टिकाएं, 95 में से 2, मिलराइट कैलेंडर और विलंब के समय को समझना। हमारी पिछली प्रस्तुति में ये प्रश्न उठा कि यदि 22 मार्च 1844 प्रथम महीने का पहला दिन है तो 22 अक्टूबर 1844 सातवें महीने का दसवां दिन कैसे हो सकता है। मार्च 1844 में मिलरियों ने जिसे 1843 का अंत समझा था उसके विषय में वे भ्रमित थे। उस निराशा के पश्चात उन्होंने समय की बाइबिलीय गणना की पुनः जांच की। इसका वर्णन गेरहार्ड डैमस्टीग्ट की पुस्तक फाउंडेशंस ऑफ द सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मैसेज एंड मिशन, विशेषतः पृष्ठ 43 और 92 पर किया गया है। जब उन्होंने ये माना कि 1843 समाप्त हो चुका था, तब उन्होंने समय की अपनी समझ के दो घटकों का पुनर्मूल्यांकन किया, 1843 से 1844 में परिवर्तन और वे दिन जो वर्षों के आरंभ और अंत को चिन्हित करते हैं ताकि वे सातवें महीने के दसवें दिन की गणना कर सके।
मैं प्रायः इस बात पर बल देता हूं कि 22 मार्च से 22 अक्टूबर तक 7 महीने होते हैं। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा कि ये सेवेंथ मंथ मूवमेंट है, परंतु ये रोचक है कि मिलराइट्स का विश्वास था कि 22 मार्च महत्वपूर्ण था और ये एक उपयोगी मानसिक संकेतक है। 7 महीने बाद आप 22 अक्टूबर तक पहुंचते हैं, ये तथ्यात्मक है।
निराशा और विलंब का समय किसी समय संबंधी भविष्यवाणी की पूर्तियां नहीं थे, बल्कि मिलेरियों की एक गलत फहमी का परिणाम थे। उनकी गलत फहमी ने ही विलंब के समय और निराशा को पूरा किया। ऐसी कोई विशिष्ट भविष्यवाणी नहीं थी जो ये कहती हो कि विलंब का समय किसी निश्चित बिंदु पर आरंभ होगा। उनका ये विश्वास कि 1843 22 मार्च 1844 को बीत चुका था निराशा का कारण बना।
डैमस्टिक कहते हैं,
यद्यपि 17 अप्रैल 1844 के अमावस्या पर यहूदी वर्ष के अंत को सूचित करने वाली कराईत गणना को प्रमुख मिलराइट पत्रिकाओं में समर्थन प्राप्त था, तथापि अधिकांश विश्वासियों ने 21 मार्च 1844 को मसीही की वापसी का समय माना। मिलराइट आंदोलन के बाहर 21 मार्च सर्वविदित था और उस तिथि पर संपूर्ण एडवेंटवाद की पूरी व्यवस्था के सर्वथा ध्वंस की एक अत्यंत व्यापक अपेक्षा विद्यमान थी।
हमने कल पढ़ा कि मिलर उस तिथि की अपेक्षा कर रहे थे। अधिकांश मिलरवादी उसी तिथि की ओर देख रहे थे और यहाँ तक कि उनके विरोधी भी इसे जानते थे और इस बात के प्रमाण के रूप में उस पर निगाह लगाए हुए थे कि मिलरवादी मिथ्या हैं। यही मानक समझ थी। उसके बीत जाने के बाद उन्होंने समय संबंधी भविष्यवाणियों की और अधिक निकटता से जांच करना आरंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे 22 अक्टूबर 1844 तक पहुंचे। ये उस प्रश्न के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है जो कल उठा था।
विलंब का समय और एलन वाइट का प्रथम दर्शन।
आज मैं विलंब के समय पर और अधिक ध्यान देना चाहता हूँ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि हम एलन वाइट के प्रथम दर्शन पर विचार कर रहे हैं, जहां वो कहती हैं कि स्वर्ग की ओर जाने वाले मार्ग के आरंभ में जो उज्ज्वल प्रकाश था वो मध्य रात्रि का पुकार था, और यदि आप उस प्रकाश का इनकार करते हैं तो आप स्वर्ग के मार्ग से गिर पड़ते हैं। मैं ये प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा हूं कि उनके दर्शन में मध्य रात्रि का पुकार दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के संपूर्ण इतिहास को सम्मिलित करता है।
व्यक्तिगत रूप से मुझे ये कहने में कोई समस्या नहीं है कि उस दर्शन में मध्य रात्रि की पुकार, जो मार्ग के आरंभ में है और पूरे पथ पर प्रकाश फैलाती है, 1840 से 1854 तक के मिलराइटों के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है। उस इतिहास की गतिशीलता को सही रीति से समझा जाना चाहिए। मध्यरात्रि की पुकार की पूर्ति स्वयं 12 अगस्त से 17 अगस्त तक हुई, जब ये संदेश एक्सेटर कैंप मीटिंग में प्रस्तुत किया गया, और फिर उन्होंने लगभग 2 महीनों तक, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने और 5 दिन, उस संदेश को आगे बढ़ाया। 22 अक्टूबर से पहले वे प्रभु की वापसी की तैयारी कर रहे थे। ये 2 महीने की अवधि मध्यरात्रि की पुकार का इतिहास है। तथापि जिन चरणों ने इसमें प्रवेश कराया, उन्हें समझे बिना आप इस अवधि को नहीं समझ सकते। मेरे लिए अधिक विशेष रूप से मध्यरात्रि की पुकार विलंब के समय का इतिहास है, जो 22 अक्टूबर 1854 तक चलता है।
3 स्वर्गदूतों के संदेशों का स्थान निर्धारित करना।
ये 1840 से 1847 तक का इतिहास है। भविष्यद्वाणी की आत्मा में ऐसे कई अंश हैं जहां सिस्टर वाइट हमें बताती हैं कि हमें ये जानना आवश्यक है कि संदेशों को कहां स्थापित करना है। जब आप संदेशों का स्थान निर्धारित करना आरंभ करते हैं, तब आप समझते हैं कि सभी संदेश समय के एक निश्चित बिंदु पर पहुंचते हैं और उसके बाद सामर्थ्य प्रदान किए जाते हैं।
पहला स्वर्गदूत 1798 में अंत के समय आता है, जब दानियेल की पुस्तक खोली जाती है और ज्ञान की वृद्धि होती है। पहले स्वर्गदूत का संदेश 11 अगस्त 1840 को सामर्थ्य प्रदान किया जाता है, जब वर्ष दिन सिद्धांत की पुष्टि समस्त विश्व के लिए हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप प्रकाशित वाक्य 10 का स्वर्गदूत नीचे आता है, जो पहले स्वर्गदूत के संदेश को सामर्थ्य दिए जाने का प्रतीक है।
दूसरा स्वर्गदूत जून 1842 में आता है। हमने कल पढ़ा था कि जून 1842 में श्री मिलर ने कास्को स्ट्रीट कलीसिया में अपने प्रस्तुतिकरणों की दूसरी श्रृंखला दी। कुछ ही अपवादों को छोड़कर प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने अपने द्वार बंद कर दिए, अतः जून 1842 में दूसरे स्वर्गदूत का संदेश आता है, क्योंकि जब कोई प्रोटेस्टेंट कलीसिया पहले स्वर्गदूत के संदेश के विरुद्ध अपना द्वार बंद कर देती है, तब वो बाबुल का भाग बन जाती है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश बाबुल से बाहर निकलने का आह्वान है, ये क्रमिक है।
सिस्टर वाइट हमें बताती हैं कि यद्यपि प्रोटेस्टेंटों ने जून 1842 में अपने द्वार बंद करने प्रारंभ कर दिए थे, तो भी बाबेल से बाहर निकलने की पुकार, जो दूसरे स्वर्गदूत के संदेश का विषय वस्तु है, वास्तव में 1844 की गर्मियों तक आरंभ नहीं हुई थी।
दूसरे स्वर्गदूत का संदेश जून 1942 में आता है और एक्सेटर कैंप मीटिंग में 12-17 अगस्त 1944 की मध्य रात्रि की पुकार के संदेश के साथ सामर्थ्यशाली बनाया जाता है।
तीसरा स्वर्गदूत 22 अक्टूबर 1884 को आता है, क्योंकि उसी दिन परम पवित्र स्थान में प्रवेश का मार्ग खोल दिया जाता है, जहां मनुष्य ये समझ सकते हैं कि अब मसीह परम पवित्र स्थान में महायाजक है। वहां वाचा का संदूक पहचाना जाता है और उस संदूक में 10 आज्ञाएं हैं। जब बहन वाइट को परम पवित्र स्थान में ले जाया गया और उन्होंने 10 आज्ञाओं को देखा, तब उन्होंने देखा कि सप्त की आज्ञा अन्य आज्ञाओं से ऊपर चमक रही थी, जो तीसरे स्वर्गदूत के संदेश में सप्त के महत्व को चिह्नित करती थी। ये सप्त या रविवार के विषय में एक परीक्षा होगी। 22 अक्टूबर 1884 को तीसरे स्वर्गदूत के संदेश की विषय वस्तु आती है।
तीनों संदेशों की एक विशेषता ये है कि जब प्रथम स्वर्गदूत का संदेश उस 1798 में आया, तब किसी ने भी उसे नहीं समझा। प्रभु ने विलियम मिलर को प्रथम स्वर्गदूत का संदेश वाहक ठहराया, परंतु 18 वर्ष बाद मिलर उस संदेश को समझना आरंभ नहीं कर सके। संदेश आता है, परंतु परमेश्वर की प्रजा को उसे पहचानने में समय लगता है, और तब वो सामर्थ्य प्राप्त करता है।
दूसरे स्वर्गदूत का संदेश जून 1842 में आता है,
परंतु 1842 में किसी भी मिलरवादी ने प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं को बाबुल कहना आरंभ नहीं किया, वे तब तक इसे पहचान नहीं पाए थे। 1844 की गर्मियों तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इसे पहचानना और लोगों को कलीसियाओं से बाहर बुलाना आरंभ किया। संदेश आता है, फिर उसे समझा जाता है और तब वो सामर्थ्य प्रदान किया जाता है।
22 अक्टूबर 1844 को जब हीराम एडसन ने मसीह को पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में जाते हुए दर्शन में देखा, तब उन्हें मसीह की सेवकाई में हुए परिवर्तन के विषय में कुछ प्रकाश प्राप्त हुआ। परंतु 23 अक्टूबर 1844 को हीराम एडसन इस विषय में कोई लेख लिखने या कोई उपदेश देने के लिए तैयार नहीं थे कि रविवार पशु की छाप है। वे उस समयावधि के पश्चात ही तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को समझ सके।
प्रकाशित वाक्य 18 का चौथा स्वर्गदूत जब तीसरे स्वर्गदूत के साथ जुड़ता है, तब तीसरे स्वर्गदूत का संदेश सामर्थी हो उठता है, जैसा कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट जानते हैं। जो लोग इसे लाइव स्ट्रीमिंग पर देख रहे हैं या बाद में डीवीडीज पर देखेंगे, वे 11 सितंबर 2001 को चौथे स्वर्गदूत के तीसरे के साथ जुड़ने के समय के विषय में वाद विवाद करना चाह सकते हैं। इस बिंदु पर हम उसके विषय में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, परंतु हम उसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं। ट्विन टावर्स के गिरने के साथ चौथा स्वर्गदूत तीसरे स्वर्गदूत के साथ जुड़ता है और यही तीसरे स्वर्गदूत का संदेश सामर्थी किया जाता है।
तीनों स्वर्गदूतों के संदेशों में ये विशेषताएं हैं, वे आते हैं, समझे जाते हैं और फिर सामर्थ्य प्रदान किए जाते हैं।
दो द्वार बंद होने की घटनाएं और मंदिर शुद्धिकरण। जून 1842 में एक द्वार बंद होना आरंभ हुआ, जिसका चिन्ह ये था कि प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने प्रथम स्वर्गदूत के संदेश के विरुद्ध अपने द्वार बंद कर दिए। इस इतिहास के आरंभ में हम एक द्वार को बंद होते देखते हैं और इस इतिहास के अंत में, द्वितीय स्वर्गदूत के इतिहास के अंत में, वह द्वार फिर बंद होता है, परम पवित्र स्थान में प्रवेश का द्वार, 10 कुमारियों के दृष्टांत का द्वार।
इन दोनों द्वारबंदियों को चिन्हित करना महत्वपूर्ण है, विशेषकर यदि आप मंदिर की दो शुद्धियों पर विचार करने जा रहे हैं। जब मसीह पृथ्वी पर थे, तब उन्होंने मंदिर को दो बार शुद्ध किया, और सिस्टर व्हाइट हमें बताती हैं कि जैसे मिलेराइटों के समय में हुआ था, वैसे ही संसार के अंत में भी मंदिर की दो शुद्धियां होंगी। मिलेराइटों के समय की मंदिर शुद्धियों को जून 1842 में द्वार के बंद होने पर चिन्हित किया जा सकता है, मंदिर का पहला द्वार प्रोटेस्टेंटवाद, और दूसरी मंदिर शुद्धि पर, जब मिलेराइटों की मंदिर शुद्धि पूर्ण हो जाती है।
हम विलंब के समय पर विचार करने जा रहे हैं।
दूसरे स्वर्गदूत के इस इतिहास में विलंब का समय 22 मार्च 1844 को प्रारंभ होता है और इसके दोनों छोर दो मंदिर शुद्धियों द्वारा सीमांकित है। यही दूसरे स्वर्गदूत का संदेश है।
ये गिदोन की कथा भी है। गिदोन की कथा में दो शुद्धिकरण थे, जो दो मंदिर शुद्धिकरणों और दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के प्रतीकों में से एक है।
भविष्यवाणी में ठहरने का समय और आधी रात की पुकार।
आइए हम अपनी अध्ययन यात्रा का आरंभ
स्पिरिचुअल गिफ्ट्स खंड 1 पृष्ठ 1988 के एक उद्धरण से करें। हम विलंब के समय का अध्ययन कर रहे हैं ताकि मध्यरात्रि की पुकार के साथ उसके संबंध को समझ सके, क्योंकि हम मध्यरात्रि की पुकार के प्रकाश को अस्वीकार नहीं करना चाहते। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम नीचे के दुष्ट संसार में पथ से गिर पड़ते हैं।
स्वर्ग से उस पराक्रमी स्वर्गदूत की सहायता के लिए स्वर्गदूत भेजे गए और मैंने ऐसी वाणियां सुनी जो मानो सर्वत्र गूंज रही थी, उसमें से निकल आओ हे मेरी प्रजा, ताकि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कुछ तुम पर न आए, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुँच गए हैं और परमेश्वर ने उसके अधर्मों को स्मरण किया है। ये संदेश तीसरे संदेश का एक परिशिष्ट सा प्रतीत हुआ। अब उसने अभी प्रकाशित वाक्य 18:4 का उद्धरण दिया है, उसमें से निकल आओ हे मेरी प्रजा, और वो कहती है, ये संदेश तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का एक परिशिष्ट सा प्रतीत हुआ और उससे संयुक्त हो गया, जैसे 1844 में मध्यरात्रि के पुकार ने दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के साथ संयुक्त होकर कार्य किया था।
दूसरे स्वर्गदूत का संदेश जून 1842 में आता है और अगस्त 1844 में मध्यरात्रि का पुकार उसमें सम्मिलित हो जाता है। इस संदेश पर आत्मा का ये उंडेला जाना, बाबुल से बाहर आने का आह्वान,
वही इतिहास है जिसका उपयोग सिस्टर व्हाइट 11 सितंबर 2001 के इतिहास का वर्णन करने के लिए करती हैं, जब तीसरे स्वर्गदूत का संदेश चौथे स्वर्गदूत के साथ संयुक्त होता है। चौथा स्वर्गदूत वो समय है जब प्रकाशित वाक्य 18 का शक्तिशाली स्वर्गदूत उतरता है।
ये संदेश तीसरे संदेश की एक वृद्धि प्रतीत हुआ और उससे जुड़ गया, जैसे 1844 में मध्यरात्रि की पुकार दूसरे स्वर्गदूत के संदेश से जुड़ गई थी। परमेश्वर की महिमा धीरजवंत प्रतीक्षा करने वाले पवित्र जनों पर ठहरी। परमेश्वर की महिमा किस पर ठहरी? धीरजवंत क्या? प्रतीक्षा करने वाले। धीरजवंत प्रतीक्षा करने वाले पवित्र जन, ठीक है, प्रतीक्षा करने वाले पवित्र जन, क्योंकि हम अब उस इतिहास में हैं जहां भविष्यवाणी कहती है, धन्य है वो जो प्रतीक्षा करता है और कदसत्र 135 तक पहुंचता है। चाहे दर्शन विलंब करे तो भी उसकी प्रतीक्षा कर। जो लोग पवित्र आत्मा की उंडेली जाने वाली परिपूर्णता को ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रतीक्षा करने वाले पवित्र जन हैं।
परमेश्वर की महिमा धीरजवंत प्रतीक्षारत पवित्र जनों पर ठहरी और उन्होंने निर्भीकतापूर्वक अंतिम गंभीर चेतावनी दी, बाबुल के पतन की घोषणा करते हुए और परमेश्वर की प्रजा को उसमें से निकल आने के लिए पुकारते हुए, ताकि वे उसके भयावह विनाश से बच सकें।
निस्संदेह ये हमारे ही समय के लिए है, परंतु हमारे समय के ये प्रतीक्षारत पवित्र जन उस मिलेराइट इतिहास के प्रतीक्षारत पवित्र जनों में पूर्वछायित किए गए हैं जिस पर हम दृष्टि कर रहे हैं।
जो प्रकाश प्रतीक्षारत जनों पर डाला गया था
वो सर्वत्र प्रवेश कर गया, और जो कोई भी कलीसियाओं में कुछ प्रकाश रखता था, जिसने उन तीन संदेशों को न सुना था और न उन्हें अस्वीकार किया था, उसने उस पुकार का उत्तर दिया और पतित कलीसियाओं को छोड़ दिया। ये है, हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ। ये हमारे समय में उन लोगों के विषय में कह रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून के लागू होने पर बाबुल की कलीसियाओं में से निकल आते हैं। वे पतित कलीसियाएं हैं, अर्थात बाबुल की कलीसियाएं।
जब से ये संदेश दिए गए थे तब से बहुत से लोग उत्तरदायित्व की आयु को पहुंच चुके थे और उन पर ज्योति चमकी और उन्हें जीवन या मृत्यु चुनने का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। अब वो ये कह रही है कि आज प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो 22 अक्टूबर 1844 के बाद से उत्तरदायित्व की आयु को पहुंच चुके हैं, और ये सत्य है। आज प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के लोग उस समय जीवित नहीं थे जब तीसरे स्वर्गदूत का संदेश मिलेराइट इतिहास में पहुंचा था। अपने समय काल में प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं द्वारा किए गए अस्वीकार के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। और यदि आप कभी ये अध्ययन करें कि मसीह का इतिहास किस प्रकार संसार के अंत को दृष्टांत रूप में प्रकट करता है, तो ये ध्यान देने योग्य एक मुख्य बिंदु है, क्योंकि तकनीकी रूप से भविष्यवाणी की दृष्टि से यरूशलेम को ईसवी सन 34 में नष्ट हो जाना चाहिए था और हो सकता था।
दानियेल 8 और दानियेल 9 में चिन्हित 2300 वर्षों में से यहूदियों के लिए 490 वर्षों का परीक्षा काल अलग ठहराया गया था। वे 490 वर्ष ईसवी सन 34 में स्तिफनुस पर पथराव किए जाने के साथ समाप्त हुए। उस समय भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम का नाश हो जाना था, परंतु उसका नाश 70 तक नहीं हुआ। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी में सिस्टर व्हाइट उस इतिहास के विषय में यही बात कहती है। वो कहती हैं कि 34 से पहले ऐसे बालक और अन्य लोग थे जिन्होंने मसीह और चेलों का संदेश नहीं सुना था, और परमेश्वर ने अपनी दया में उन्हें समय दिया कि यरूशलेम के विनाश से पहले उस संदेश का सामना करें। जैसा कि मसीह करते हैं, वैसा ही वो भी यरूशलेम के विनाश को संसार के अंत के एक दृष्टांत के रूप में चिन्हित करती है।
वो इतिहास उसी इतिहास का पूर्वाभास कराता है जिसके विषय में वो बोल रही है।
जब रविवार का कानून संयुक्त राज्य अमेरिका में आएगा और संदेश अंततः पतित कलीसियों तक पहुंचेगा, तब परमेश्वर की वे संतानें जो अब बाबुल में हैं, उन अस्वीकृतियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई जाएंगी जो उनकी कलीसियों या उनके पूर्वजों ने 19वीं शताब्दी में की थी।
जब से ये संदेश दिए गए थे तब से अनेक लोग उत्तरदायित्व की आयु को पहुंच चुके थे और उन पर ज्योति चमकी तथा उन्हें जीवन या मृत्यु चुनने का विशेषाधिकार दिया गया। कुछ ने जीवन को चुना और अपने प्रभु की बाट जोहने वालों तथा उसकी सब आज्ञाओं का पालन करने वालों के साथ अपना पक्ष लिया। तीसरे संदेश को अपना कार्य करना था, सबकी उस पर परीक्षा होनी थी और बहुमूल्य जनों को धार्मिक समूहों में से बुलाकर बाहर निकाल लिया जाना था। एक प्रेरक सामर्थ्य सच्चे मन वालों को संचालित करती है, जबकि परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटन संबंधियों और मित्रों को भय और संयम में रोके रखता है, और वे न तो साहस करते हैं और न ही उनमें सामर्थ्य होती है कि उन लोगों को रोकें जो अपने ऊपर परमेश्वर के आत्मा के कार्य को अनुभव करते हैं। अंतिम बुलाहट निर्धन दासों तक भी पहुंचाई जाती है, और उनमें से धर्मपरायण जन दीनतापूर्वक वचन प्रकट करते हुए अपने आनंदमय छुटकारे की संभावना पर अत्यधिक आनंद के गीत उंडेलते हैं, और उनके स्वामी उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि भय और विस्मय उन्हें मौन बनाए रखते हैं। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए जाते हैं, रोगी चंगे किए जाते हैं, और चिन्ह और अद्भुत काम विश्वासियों के पीछे पीछे चलते हैं। परमेश्वर इस कार्य में है, और प्रत्येक पवित्र जन परिणामों से निडर होकर अपने ही विवेक की दृढ़ मान्यता का अनुसरण करता है और उन लोगों के साथ मिल जाता है जो परमेश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करते हैं, और वे सामर्थ्य के साथ तीसरे संदेश का प्रचार दूर दूर तक करते हैं। मैंने देखा कि तीसरा संदेश उस शक्ति और सामर्थ्य के साथ समाप्त होगा जो मध्य रात्रि के क्रंदन से कहीं अधिक होगी।
इन दो अनुच्छेदों में ये दूसरा अवसर है जब उसने संसार के अंत में होने वाले संडे लॉ के समय हमारे इतिहास की तुलना मिडनाइट क्राई के इतिहास से की है। पहली बार वो कहती है कि प्रकाशित वाक्य 18 का पराक्रमी स्वर्गदूत तृतीय स्वर्गदूत के साथ वैसे ही जुड़ता है जैसे मिडनाइट क्राई द्वितीय स्वर्गदूत के साथ जुड़ी थी। यद्यपि वो संडे लॉ संकट के इतिहास को संबोधित कर रही है, तथापि वो स्पष्ट रूप से द्वितीय स्वर्गदूत के इतिहास को एक संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयोग कर रही है। ये समानांतर इतिहास है।
परम प्रधान से शक्ति से विभूषित परमेश्वर के सेवक, जिनके मुखमंडल प्रकाशित थे और पवित्र समर्पण से दीप्तिमान थे, आगे बढ़े अपना कार्य पूरा करते हुए और स्वर्ग से प्राप्त संदेश का प्रचार करते हुए। वे आत्माएं जो समस्त धार्मिक समुदायों में बिखरी हुई थीं, उस बुलाहट का प्रत्युत्तर देने लगी, और बहुमूल्य जन उन अभिशप्त कलीसियाओं में से शीघ्रता से बाहर निकाले गए, जैसे लूत उसके विनाश से पहले सदोम में से शीघ्रता से बाहर निकाला गया था।
जब बाबुल से निकल आने की पुकार की बात आती है, चाहे वो संसार के अंत में हो या दूसरे स्वर्गदूत के संदेश में, लूत उस इतिहास तथा सदोम के विनाश का प्रतीक है।
यदि आप दानियल 11 को सही प्रकार से समझते हैं, तो पद 41 में उत्तर का राजा उस मनोहर देश में प्रवेश करता है और बहुत से लोग परास्त किए जाते हैं, परंतु उसके हाथ से ये बच निकलेंगे, अर्थात एदोमी, मोआब और अम्मोनियों में से मुख्य लोग। मोआब और अम्मोन लूत की दो पुत्रियों की संतान हैं। लूत का परिवार उनका प्रतिनिधित्व करता है जो रविवार की व्यवस्था के संकट के समय पोप सत्ता के हाथ से बच निकलते हैं।
बहन वाइट इस प्रतीकात्मकता का उपयोग करती है। पतित कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व लूत द्वारा किया गया है और बहुमूल्य जनों को उन अभिशप्त कलीसियाओं में से शीघ्रता से बाहर निकाला गया, जैसे लूत को सदोम के विनाश से पूर्व वहां से शीघ्रता से बाहर निकाला गया था। परमेश्वर के लोग उस उत्कृष्ट महिमा के द्वारा जो उन पर प्रचुर परिमाण में उतर आई, सुसज्जित और दृढ़ किए गए ताकि वे परीक्षा की घड़ी को सहने के लिए तैयार हो जाएं। सर्वत्र बहुत सी आवाजें सुनाई दी जो कह रही थीं, यहां पवित्र लोगों का धीरज है, यहां वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास को मानते हैं।
यद्यपि वो संसार के अंत में बाबुल से निकल आने की पुकार के विषय में बोल रही है, वो उस पुकार का वर्णन करने के लिए मिल्रवादी कालखंड में दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के इतिहास का उपयोग करती है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश बाबुल से निकल आने की एक पुकार है, और ये इतिहास रविवार व्यवस्था के संकट के इतिहास का प्रतिरूप है।
इस इतिहास का वर्णन करने के लिए एलन वाइट जिन बाइबिलीय संदर्भों का उपयोग करती हैं, उनमें से एक सदोम और अमोरा की कथा है। हम उत्पत्ति 19:1-11 से पढ़ेंगे जो लूत की कथा का एक भाग है।
और संध्या के समय दो स्वर्गदूत सदोम में आए, और लूत सदोम के फाटक पर बैठा था। लूत ने उन्हें देखकर उनके स्वागत के लिए उठकर भेंट की और भूमि की ओर मुख करके दंडवत किया, और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर ठहरिए और अपने पांव धोइए, तब प्रातःकाल उठकर अपनी राह लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, हम तो रात भर चौक में ठहरेंगे।
परंतु उसने उन पर बहुत आग्रह किया। तब वे उसके यहाँ मुड़ गए और उसके घर में प्रवेश किया और उसने उनके लिए भोज तैयार किया और अखमीरी रोटियाँ पकाई और उन्होंने भोजन किया। परंतु उनके सोने से पहले नगर के पुरुष अर्थात सदोम के पुरुषों ने वृद्ध और जवान वरन सब लोग नगर के हर भाग से आकर उस घर को चारों ओर से घेर लिया और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा, वे पुरुष कहाँ हैं जो आज रात तेरे पास आए हैं? उन्हें हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उन्हें जाने। तब लूत उनके पास द्वार पर बाहर गया और अपने पीछे द्वार बंद कर लिया और कहा, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ऐसी दुष्टता न करो। देखो, मेरी दो बेटियाँ हैं जिन्होंने पुरुष को नहीं जाना। मैं विनती करता हूँ उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊँ और तुम्हारी दृष्टि में जो अच्छा लगे उनके साथ वैसा ही करो, केवल इन पुरुषों के साथ कुछ न करना, क्योंकि इसी कारण वे मेरी छत की छाया में आए हैं। उन्होंने कहा, पीछे हट। और फिर उन्होंने कहा, ये एक जन परदेशी बनकर यहाँ आया था और अब ये न्यायी बनना चाहता है, अब हम तेरे साथ उनसे भी बुरा व्यवहार करेंगे। और उन्होंने उस मनुष्य अर्थात लूत पर बहुत बल किया और द्वार को तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन पुरुषों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर के भीतर खींच लिया और द्वार बंद कर लिया और घर के द्वार पर जो पुरुष थे उन्हें छोटे से बड़े तक अंधापन से ऐसा मारा कि वे द्वार ढूंढते ढूंढते थक गए।
क्रमिक परीक्षा और विलंब का समय।
बहन व्हाइट मसीही के समय और मिलरियों के समय में एक प्रगतिशील परख की प्रक्रिया के विषय में बात करती हैं, जो हमारे लिए एक प्रगतिशील परख की प्रक्रिया को दर्शाती है। अर्ली राइटिंग्स पृष्ठ 259 में वो कहती हैं,
जिन लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश ग्रहण नहीं किया वे यीशु की शिक्षाओं से कोई लाभ नहीं उठा सकते थे और न ही वे ऊपर के पवित्र स्थान में मसीह की सेवकाई से लाभान्वित हो सकते थे। फिर वो कहती है, जिन लोगों ने पहले स्वर्गदूत का संदेश ग्रहण नहीं किया वे दूसरे स्वर्गदूत के संदेश से कोई लाभ नहीं उठा सकते थे और न ही वे मध्यरात्रि की पुकार से लाभान्वित हो सकते थे।
अर्ली राइटिंग्स 259 के उस अंश में जब मसीह के समय में द्वार बंद हो जाता है तब यहूदी पूर्ण अंधकार और अंधत्व में होते हैं।
दूसरे स्वर्गदूत का मिलेराइट इतिहास लूत का इतिहास है। वे दो स्वर्गदूत नगर में आते हैं। जून 1842 दूसरे स्वर्गदूत का संदेश पहुंचता है और लूत उन्हें रात भर ठहराता है, ठहरने का समय, फिर न्याय होता है और उसके बाद एक द्वार बंद हो जाता है 22 अक्टूबर 1844।
इसे समेटने से पहले हम एक अन्य बाइबिलीय इतिहास पर दृष्टि डालेंगे जिसमें विलंब का एक समय मिलराइट इतिहास के साथ मेल खाता है।
मूसा पवित्र स्थान और प्रतीक्षा का समय।
अगला वृत्तांत ये है कि मूसा पवित्र स्थान के निर्माण और व्यवस्था के विषय में निर्देश प्राप्त करता है।
सातवें दिन जो सप्त था मूसा को मेघ के भीतर ऊपर बुलाया गया। सघन मेघ समस्त इसराइल की दृष्टि में खुल गया और यहोवा की महिमा भस्म कर देने वाली अग्नि के समान प्रकट हुई और मूसा मेघ के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। पैट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स 313-314।
पर्वत पर ठहरने के वे 40 दिन तैयारी के उन 6 दिनों को सम्मिलित नहीं करते थे। इस इतिहास काल के दौरान मूसा ने मंदिर के निर्माण के विषय में निर्देश प्राप्त करने में 46 दिन बिताए, जो 1798 से 1844 तक के उन 46 वर्षों के समांतर है जब प्रभु ने मिलराइट मंदिर को खड़ा किया तथा यूहन्ना 2:20 में उल्लिखित हेरोदेस द्वारा मंदिर के पुनर्निर्माण के 46 वर्षों के भी, साथ ही मानवीय मंदिर के 46 गुणसूत्रों के भी। उन 6 दिनों के दौरान यहोशू मूसा के साथ था और दोनों ने मन्ना खाया और उस छोटे जल प्रवाह से पिया जो पर्वत से उतरता था। यहोशू मूसा के साथ मेघ में प्रवेश नहीं किया वरन बाहर ही ठहरा रहा और मूसा की वापसी की प्रतीक्षा करते हुए प्रतिदिन खाता पीता रहा, जबकि मूसा उन 40 दिनों तक उपवास करता रहा।
पर्वत पर अपने प्रवास के दौरान मूसा को एक ऐसे पवित्र स्थान के निर्माण के लिए निर्देश प्राप्त हुए जिसमें दैवीय उपस्थिति विशेष रीति से प्रकट होने वाली थी, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। निर्गमन 25:8 ये परमेश्वर की आज्ञा थी।
यही हम पवित्र स्थान के निर्माण के साथ 46 संख्या को संबद्ध पाते हैं। हम निर्गमन से पढ़ेंगे
और इस कथा में एक विलंब के समय पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये मसीह के समय, मिलरवादियों के समय और संसार के अंत में होने वाले विलंब के समय का पूर्वाभास प्रस्तुत करता है। ये विलंब का समय ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जो मध्यरात्रि की पुकार के घोषित होने और उपासकों के दो वर्गों के उत्पन्न होने की अनुमति देता है। विलंब के समय के बिना उस इतिहास की वे गतिशीलताएं विद्यमान न होती जो उस कार्य के लिए आवश्यक हैं जिसे प्रभु मध्यरात्रि की पुकार के समय सिद्ध करना चाहता है। हमें समझना चाहिए कि ये विलंब का समय किसका प्रतिनिधित्व करता है।
और उसने मूसा से कहा, तू और हारून, नादाब और अभिहू और इसराइल के 70 पुरनियों सहित यहोवा के पास ऊपर आओ और दूर ही से दंडवत करो। और मूसा ने आधा लोहू लेकर कटोरों में रखा और आधा लोहू वेदी पर छिड़का। फिर उसने वाचा की पुस्तक लेकर लोगों को पढ़कर सुनाई और उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम करेंगे और आज्ञाकारी रहेंगे। तब मूसा ने वो लोहू लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस वाचा का लोहू है जो यहोवा ने इन सब वचनों के विषय में तुम्हारे साथ बांधी है। निर्गमन 24:1-6-8।
ये 46 दिवसीय अवधि, ये ठहरने का समय, वो समय है जब प्रभु एक जन समूह के साथ वाचा में प्रवेश कर रहे हैं। क्या प्रभु ने इस इतिहास में मिलेराइटों के साथ वाचा बांधी थी? हाँ। क्या उसने मसीह के समय पिंतेकुस्त के दिन मसीही कलीसिया के साथ वाचा बांधी?
हाँ।
अतः ये ठहरने का समय उन मार्ग चिन्हों में से एक है जिनके द्वारा प्रभु किसी प्रजा के साथ वाचा में प्रवेश करता है।
और यहोवा ने मूसा से कहा, मेरे पास पर्वत पर ऊपर आ और वही ठहर, और मैं तुझे पत्थर की पटियाए और व्यवस्था और वे आज्ञाएं दूंगा जिन्हें मैंने लिखा है, ताकि तू उन्हें सिखाए। तब मूसा उठा और उसका सेवक यहोशू भी, और मूसा परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और उसने पुरनियों से कहा, जब तक हम फिर तुम्हारे पास न लौट आएं, तब तक यही हमारे लिए ठहरे रहो। और देखो, हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं, यदि किसी मनुष्य का कोई मामला हो तो वो उनके पास आए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को ढांप लिया, और यहोवा की महिमा सीनै पर्वत पर ठहर गई और बादल ने उसे 6 दिन तक ढांपे रखा, और 7वें दिन उसने बादल के बीच से मूसा को पुकारा, और यहोवा की महिमा का दर्शन इसराइलियों की दृष्टि में पर्वत की चोटी पर भस्म कर देने वाली अग्नि के समान था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। निर्गमन 24:12-18।
मूसा के इतिहास में हम एक ठहराव का समय देखते हैं। इस समय के दौरान वे दो पटियाएं वाचा का प्रतीक हैं और प्रभु वाचा में प्रवेश कर रहा है तथा मूसा को मंदिर के निर्माण के विषय में निर्देश दे रहा है। 1798 से 1844 तक उन 44 वर्षों के दौरान प्रभु मिलेराइट मंदिर को खड़ा कर रहा था ताकि वो आधुनिक इसराइल के साथ वाचा में प्रवेश कर सके। जिस अवधि के विषय में हमने अभी मूसा और 70 प्राचीनों के ठहरने के समय के संबंध में पढ़ा है उसे बाइबिलीय इतिहास में पिंतेकुस्त कहा जाता है। फसह के 50 दिन बाद प्रभु ने इसराइल को आज्ञा दी कि वे पिंतेकुस्त का स्मरण सदा के लिए मनाएं। नए नियम में पिंतेकुस्त प्रारंभिक मसीही कलीसिया का एक प्रमुख केंद्र है जो इसी इतिहास का स्मरण कराता है। हम मसीही के समय के पिंतेकुस्त में, मिलरवादियों के इतिहास में और संसार के अंत में भी इन्हीं घटकों को पाते हैं, और ये घटक पुनः दोहराए जाएंगे।
नए नियम में पिंतेकुस्त और प्रतीक्षा का समय।
आइए एम्माउस के मार्ग की कथा के संदर्भ में लूका 24:44-52 के आधार पर पिंतेकुस्त पर दृष्टि डालें। लूका में इससे पहले यीशु के साथ चल रहे दो शिष्य उनसे अपने साथ ठहरने का आग्रह करते हैं। बाइबल में ठहरना शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां एक ठहरने का समय चिह्नित है, परंतु हम इसी इतिहास में एक भिन्न ठहरने के समय को चिह्नित करना चाहते हैं।
और उसने, यीशु ने उनसे कहा, ये वे बातें हैं जो मैंने तुमसे उस समय कही थीं जब मैं अभी तुम्हारे साथ था, कि जो कुछ मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं में और भजनों में लिखा गया है वो सब पूरा होना आवश्यक है। तब उसने उनकी समझ खोली ताकि वे पवित्र शास्त्र को समझ सके, और उसने उनसे कहा, ऐसा लिखा है और ऐसा आवश्यक था कि मसीह दुख उठाए और 3रे दिन मरे हुओं में से जी उठे, और ये कि उसके नाम से मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार सब जातियों में किया जाए,
यरूशलेम से आरंभ करके, और तुम इन बातों के साक्षी हो। और देखो, मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा तुम पर भेजता हूँ, परंतु तुम यरूशलेम नगर में तब तक ठहरे रहो जब तक तुम ऊपर से सामर्थ्य न प्राप्त कर लो।
ठहरने का समय उस आज्ञा द्वारा चिन्हित है कि सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए यरूशलेम में ठहरे रहें। यही पर मिलरवादियों के लिए संदेश का सामर्थ्यकरण होता है।
ठहरना अर्थात प्रतीक्षा करना है। धन्य है वो जो प्रतीक्षा करता है। किस बात के लिए? सामर्थ्य प्रदान के लिए।
आप मध्यरात्रि के पुकार की सामर्थ्य प्राप्ति को सही रीति से समझ नहीं सकते जब तक कि आप उस विलंब के समय को न समझे जहां उन्हें उस सामर्थ्य की प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी गई है। ये उस कथा का एक भाग है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पीछे स्थापित किया गया प्रकाश निरंतर चमकता रहे, तो आपको समूचे इतिहास को समझना होगा।
हो सकता है कि अभी आप न देख पा रहे हों कि ये किस ओर जा रहा है, परंतु कल ये स्पष्ट हो जाएगा।
तीन भविष्यवाणियां और विलंब का समय।
तीन भविष्यवाणियों ने मिले राइटों को एक ऐसी भ्रांति तक पहुंचाया जिसके कारण विलंब का समय और पहली निराशा उत्पन्न हुई। ये वही तीन भविष्यवाणियां हैं जिनके विषय में विलियम मिलर ने कहा था कि उन्हें आरंभिक बिंदु के रूप में वही दी गई थी, 2935, 2520 और 30,000 दिन।
यदि आप समझते हैं कि विलंब का समय मध्य रात्रि की पुकार का एक विशिष्ट अंग है, तो आपको ये पूछना चाहिए कि उस विलंब के समय को किसने उत्पन्न किया। वे यही तीन समय संबंधी भविष्यवाणियां थीं, 2935, टू एंड्रोस फैम्पर्स और 23,000।
यदि आप 2520 और 2945 की भविष्यवाणी को अस्वीकार करते हैं, तो आप मध्य रात्रि की पुकार का इनकार कर रहे हैं और नीचे स्थित दुष्ट संसार की ओर जाने वाले मार्ग से गिर पड़ते हैं।
इन्हीं सब बातों के साथ हम उसी दिशा में अग्रसर है। वे इसलिए ठहरते हैं कि उन्हें ऊपर से सामर्थ्य की प्रतीक्षा करनी है, और मिलरवादी इतिहास में वो सामर्थ्य मध्य रात्रि का पुकार था।
परंतु तुम यरूशलेम नगर में तब तक ठहरे रहो जब तक ऊपर से सामर्थ्य पाकर न पहन लिए जाओ। और वो उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया, और उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और ऐसा हुआ कि जब वो उन्हें आशीष दे रहा था, तो वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया, और उन्होंने उसकी उपासना की और बड़े आनंद के साथ यरूशलेम को लौट गए। लूका 24:44-52।
बैतनिया यरूशलेम का एक उपनगर है जो नगर से लगभग 1.5 मील बाहर स्थित है। यीशु के दिनों में ये एक उल्लेखनीय दूरी थी क्योंकि लोग हर स्थान पर पैदल ही जाया करते थे।
बेथानी का अर्थ है गरीबों का घर। यीशु का सबसे प्रिय स्थान बैतनिया था,
जहां लाजर, मरियम और मार्था रहते थे।
ये ध्यान देने योग्य है कि विजयोत्सवी प्रवेश का इतिहास वही है जिसका उपयोग सिस्टर व्हाइट मध्य रात्रि के पुकार का वर्णन करने के लिए करती है।
यीशु के विजयोत्सव पूर्ण प्रवेश के लिए यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले वो बैतनिया में ठहरे, जो दरिद्रों का घर है। जैसे मध्यरात्रि की पुकार से पहले ठहरने का एक समय होता है, वैसे ही विजयोत्सव पूर्ण प्रवेश से पहले भी ठहरने का एक समय होता है। वे समानांतर इतिहास हैं, परंतु हम अब भी लूका 24:44-52 के साथ व्यवहार कर रहे हैं और यरूशलेम में प्रतीक्षा करते हुए ठहरे हुए हैं।
अर्ली राइटिंग्स पृष्ठ 2547 में मिले राइट इतिहास के विषय में बोलते हुए सिस्टर व्हाइट कहती है,
निराश हुए जनों ने पवित्र शास्त्रों से देखा कि वे विलंब के समय में थे और उन्हें दर्शन की पूर्ति के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। वही प्रमाण जिन्होंने उन्हें 1843 में अपने प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित किया था, उन्होंने उन्हें 1844 में भी उनकी अपेक्षा करने के लिए अग्रसर किया।
मध्यरात्रि के पुकार के समय मिलरियों की शास्त्रों के प्रति समझ खोल दी गई थी।
पहली निराशा के निराश जनों ने पवित्र शास्त्रों से देखा कि वे विलंब के समय में थे, और वही प्रमाण जिसने उन्हें प्रभु के आगमन के लिए 1843 की भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित किया था, अब 1844 को सिद्ध करता था।
प्रभु ने उनके लिए क्या किया था?
उसने उनकी समझ खोल दी। ये चेलों के इतिहास के समानांतर एक इतिहास है।
याकूब का ठहराव का समय और वाचा।
याकूब की कथा में ठहरने का एक समय है।
ये ठहरने का समय अनेक भविष्य सूचक सत्यों पर प्रकाश डालता है, यद्यपि हम उनमें से केवल कुछ ही का संक्षेप में स्पर्श करेंगे।
उत्पत्ति 28:10 से आरंभ होकर ये दर्शाता है कि याकूब की कथा जगत के अंत का पूर्वाभास कराती है।
याकूब के पुत्र जगत के अंत में 194,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं।
याकूब के पुत्र 4 स्त्रियों से उत्पन्न हुए,
2 पत्नियां राहेल और लियाह और 2 उपपत्नियां। उसे अपनी पत्नियों के लिए परिश्रम करना पड़ा, लियाह के लिए 2022 दिन और राहेल के लिए 2022 दिन। याकूब की कथा में हम दोनों 2022 तो को देखते हैं जो उत्तरी और दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
याकूब मिलराइट इतिहास और 144,000 का एक प्रतीक है। उसकी कथा को संसार के अंत में हमारे लिए प्रकाश प्रदान करना चाहिए।
और याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला और वो एक स्थान पर पहुंचा और वहां सारी रात ठहरा क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका था। और उसने उस स्थान के पत्थरों में से कुछ लेकर अपने सिरहाने रखे और उस स्थान में सोने के लिए लेट गया। तब उसने स्वप्न देखा और देखो पृथ्वी पर एक सीढ़ी खड़ी थी और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और देखो परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते और उतरते थे और देखो यहोवा उसके ऊपर खड़ा था और उसने कहा मैं यहोवा तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश पृथ्वी की धूल के समान होगा और तू पश्चिम और पूर्व और उत्तर और दक्षिण की ओर फैल जाएगा और पृथ्वी के सब कुल तेरे और तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएंगे। और देख मैं तेरे संग हूँ और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरी रक्षा करूँगा और तुझे फिर इस भूमि में लौटा लाऊँगा, क्योंकि जब तक मैं वो सब पूरा न कर लूँ जो मैंने तुझसे कहा है तब तक मैं तुझे न छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28:10-15।
प्रभु याकूब के साथ वाचा में प्रवेश कर रहा है। जब प्रभु मूसा और इसराइल के साथ वाचा में प्रवेश करता है तब एक ठहरने का समय होता है। जब वो याकूब के साथ वाचा में प्रवेश करता है तब एक ठहरने का समय होता है। जब वो मिलरवादी इतिहास में आधुनिक इसराइल के साथ वाचा में प्रवेश करता है तब एक ठहरने का समय होता है। और जब वो पिंतेकुस्त के समय मसीही कलीसिया के साथ वाचा में प्रवेश करता है तब एक ठहरने का समय होता है।
इस कथा में विलंब के समय के दौरान प्रभु अपने लोगों की समझ को अपने वचन के प्रति खोल देता है, जिसका प्रतीक वो सीढ़ी है जिस पर स्वर्गदूत ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते हैं। यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच संचार का प्रतीक है।
तब याकूब अपनी नींद से जागा और कहा
निश्चय यहोवा इस स्थान में है और मैं ये न जानता था। और वो भयभीत हुआ और कहा ये स्थान कितना भयानक है, ये और कोई नहीं परंतु परमेश्वर का भवन है और यही स्वर्ग का फाटक है। उत्पत्ति 28:16-17।
मध्य रात्रि की पुकार पर मिलेराइट कुमारियां जाग उठ रही हैं और परमेश्वर का भवन बन रही हैं। वो उनके साथ वाचा में प्रवेश कर रहा है और उन्हें आधुनिक इसराइल बना रहा है।
और याकूब भोर को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सिरहाने रखा था लेकर उसे स्मारक स्तंभ के रूप में खड़ा किया और उसके शीर्ष पर तेल उंडेला और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, परंतु उस नगर का नाम पहले लूज था। उत्पत्ति 28:18-19।
लूज परिवर्तित किया जाता है।
1798 में मिलेराइट लोग परमेश्वर की प्रजा नहीं थे। मिलेराइटों का इतिहास इस बात का इतिहास है कि वो किस प्रकार उनके साथ वाचा में प्रवेश करता है और उन्हें अपनी प्रजा बनाता है, उन्हें लूज से बेतेल में परिवर्तित करता है।
और याकूब ने मन्नत मानी ये कहकर यदि परमेश्वर मेरे संग रहे और इस मार्ग में जिस पर मैं जा रहा हूँ मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए वस्त्र दे ताकि मैं कुशल से अपने पिता के घर फिर लौट आऊँ तब यहोवा मेरा परमेश्वर होगा और ये पत्थर जिसे मैंने खम्भा ठहराया है परमेश्वर का भवन होगा और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां अंश मैं निश्चय ही तुझे दूंगा। उत्पत्ति 28:20-22।
याकूब की मन्नत वाचा में प्रवेश करना है। वो परमेश्वर से विनती करता है कि वो उसे मार्ग में प्राचीन पथों में बनाए रखे और उसे खाने के लिए रोटी दे। मिलेराइटों को अपनी ही रोटी खानी है और प्रोटेस्टेंट मूर्खता की ओर फिर न लौटना है।
यदि हम उस रोटी को खाते रहें जो परमेश्वर हमें देता है
तो वो हमारे साथ अपनी वाचा को बनाए रखेगा। याकूब की मन्नत में रोटी और वस्त्र 1843 चार्ट पर निहित उन सत्यों का प्रतीक हैं जिन्हें एलन व्हाइट रॉक ऑफ एजेस पुराने मार्ग और रोटी कहती है।
वह सीढ़ी जिसे याकूब ने रात्रि दर्शन में देखा, जिसका आधार पृथ्वी पर टिका हुआ था और जिसका सर्वोच्च सोपान परम उच्च स्वर्गों तक पहुंचता था, स्वयं परमेश्वर उस सीढ़ी के ऊपर और उसकी महिमा प्रत्येक सोपान पर आलोकित होती हुई और स्वर्गदूत इस ज्योतिमय सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते हुए यह इस संसार और स्वर्गीय लोकों के बीच निरंतर बनाए रखे जाने वाले संचार का प्रतीक है। परमेश्वर अपनी इच्छा को स्वर्गीय स्वर्गदूतों की साधनता द्वारा मानव जाति के साथ निरंतर संपर्क में रहते हुए पूरा करता है। ये सीढ़ी इस पृथ्वी के निवासियों के साथ संचार का एक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण माध्यम प्रकट करती है। वो सीढ़ी याकूब के लिए संसार के उद्धारकर्ता का प्रतीक थी, जो पृथ्वी और स्वर्ग को एक साथ जोड़ता है। जिसने भी सत्य के प्रमाण और प्रकाश को देखा है और सत्य को स्वीकार करता है तथा यीशु मसीह में अपने विश्वास की घोषणा करता है, वह इस शब्द के सर्वोच्च अर्थ में एक मिशनरी है। वो स्वर्गीय निधियों का ग्रहण करता है और उन्हें बांटना, जो उसने प्राप्त किया है उसका प्रसार करना उसका कर्तव्य है। फंडामेंटल्स ऑफ क्रिश्चियन एजुकेशन 270।
जब वो विलंब के समय में उनकी समझ को खोलता है तो वो ऐसा सीढ़ी पर स्वर्गदूतों को ऊपर और नीचे भेजकर करता है।
यदि आपने सत्य को ग्रहण किया है तो उसे बांटने का उत्तरदायित्व आप पर है।
यदि आप अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं तो आप सीढ़ी संचार का माध्यम बन जाते हैं। हमें उसी माध्यम होने के लिए बुलाया गया है।
सीढ़ी मसीह का प्रतीक थी, वही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संचार का माध्यम है और स्वर्गदूत पतित मानव जाति के साथ निरंतर संपर्क में आते जाते रहते हैं। नतनएल से मसीह के ये वचन उस सीढ़ी के प्रतीक के साथ सामंजस्य में थे, जब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इसके बाद तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दूतों को मनुष्य के पुत्र पर चढ़ते और उतरते देखोगे। यहाँ उद्धारकर्ता अपने आप को उस रहस्यपूर्ण सीढ़ी के रूप में प्रकट करता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संचार को संभव बनाती है। रिव्यू एंड हेरल्ड, November 11, 1890।
याकूब के लिए ठहरने का एक समय है। वो ठहरता है और सीढ़ी का स्वप्न देखता है, जो इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि ठहरने के समय में प्रभु अपने वचन की समझ अपने लोगों पर खोल रहे हैं। इस इतिहास में प्रभु अपने लोगों के साथ वाचा में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें लूज से लेकर बेतेल परमेश्वर का घर बना रहे हैं।
वो संप्रेषण का माध्यम, जिसका प्रतीक उन स्वर्गदूतों द्वारा किया गया है जो उस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते हैं, जो मसीह है, जकरिया में भी प्रस्तुत किया गया है। सिस्टर व्हाइट ने इस पर रिव्यू एंड हेरल्ड July 20, 1879 में टिप्पणी की है, यद्यपि उन्होंने एक भिन्न प्रतीक का प्रयोग किया है।
संपूर्ण पृथ्वी के प्रभु के पास खड़े हुए अभिषिक्त जनों को वो स्थान प्राप्त है जो कभी शैतान को आच्छादक करूप के रूप में दिया गया था, उसके सिंहासन को घेरे हुए पवित्र प्राणियों के द्वारा।
पवित्र प्राणी कौन है? स्वर्गदूत।
अपने सिंहासन के चारों ओर स्थित पवित्र प्राणियों के द्वारा प्रभु पृथ्वी के निवासियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। वही सीढ़ी है। केवल यहाँ सिस्टर व्हाइट सीढ़ी को प्रतीक के रूप में प्रयोग नहीं करने जा रही है।
स्वर्णिम तेल उस अनुग्रह का प्रतीक है जिसके द्वारा परमेश्वर विश्वासियों के दीपकों को भरा रखता है, ताकि वे टिमटिमाकर बुझ न जाएं। यदि ऐसा न होता कि ये पवित्र तेल परमेश्वर की आत्मा के संदेशों में स्वर्ग से उंडेला जाता है, तो बुराई की शक्तियों का मनुष्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता। जब हम उन संदेशों को ग्रहण नहीं करते जो परमेश्वर हमें भेजता है, तब परमेश्वर का अनादर होता है। इस प्रकार हम उस स्वर्णिम तेल को अस्वीकार करते हैं जिसे वो हमारी आत्माओं में उंडेलना चाहता है, ताकि वो अंधकार में रहने वालों तक पहुँचाया जाए। जब ये पुकार सुनाई देती है, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए निकलो, तब वे लोग जिन्होंने पवित्र तेल ग्रहण नहीं किया है, जिन्होंने अपने हृदयों में मसीह के अनुग्रह को संजोकर नहीं रखा है, मूर्ख कुमारियों के समान पाएंगे कि वे अपने प्रभु से भेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके पास अपने आप में तेल प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। परंतु यदि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगा जाए, यदि हम मूसा के समान विनती करें, मुझे अपनी महिमा दिखा, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया जाएगा। स्वर्णिम नलिकाओं के द्वारा वो स्वर्णिम तेल हमें पहुँचाया जाएगा, न बल से न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। धर्म के सूर्य की उज्ज्वल किरणों को ग्रहण करके परमेश्वर की संतानें जगत में ज्योतियों के समान चमकती हैं। रिव्यू एंड हेरल्ड July 20, 1879।
याकूब की कहानी में हमें मिलराइट इतिहास की कहानी मिलती है। उसमें विलंब का एक समय है और वो उस सीढ़ी को देखता है
जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संचार का प्रतिनिधित्व करती है।
जकरिया हमें दो स्वर्णिम नलिकाओं के विषय में बताता है। एक सीढ़ी की दो मुख्य पटरियां होती है, परंतु जकरिया उन्हें दो स्वर्णिम नलिकाएं कहता है।
हमें उन संदेशों को ग्रहण करना है जो स्वर्ग की सीढ़ी से उतरकर आते हैं और उन्हें दूसरों तक पहुंचाना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उस सीढ़ी का अंग, उस संप्रेषण प्रक्रिया का अंग बन जाते हैं।
बहन व्हाइट इसे 10 कुमारियों के दृष्टांत से जोड़ती हैं। मिलरवादी इतिहास में वे 10 कुवारियों के दृष्टांत को पूरा कर रहे थे।
याकूब का ठहरने का समय मत्ती 25 और हबक्कूक 2 का वही ठहरने का समय है। यदि दर्शन ठहर भी जाए तो उसकी बाट जोहते रहो।
याकूब और जकरियाह की कथा एक ही ठहराव के समयों की है। विलंब का समय अन्य बातों के साथ इस बात को सूचित करता है कि प्रभु अपने अनुयायियों की, परमेश्वर के वचन की समझ को बढ़ाने वाले हैं।
यदि तुम वो पवित्र तेल ग्रहण नहीं करते तो तुम एक मूर्ख कुवारी हो।
जब आप इस इतिहास तक पहुँचते हैं, जब द्वार बंद हो जाता है और आप एक मूर्ख कुमारी होते हैं, तो सिस्टर व्हाइट कहती है, वे सबसे दुखद शब्द जो कभी सुने गए, मैं तुम्हें नहीं जानता था।
आप विलंब के समय को मध्यरात्रि की पुकार से पृथक नहीं कर सकते।
विलंब का समय पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को उत्पन्न करता है, जो मध्यरात्रि की पुकार के समय परमेश्वर की प्रजा की समझ को वचन के प्रति खोल देता है और वो तेल प्रदान करता है जो बुद्धिमान कुमारियों को मूर्ख कुमारियों से भिन्न ठहराता है।
प्रतीक्षा का समय और मसीह का मुकुटधारी चमत्कार।
एक ठहराव का समय है जब मसीह ने अपना मुकुटमणि कार्य किया,
लाजर को जिलाया।
यीशु को ये संदेश मिला, लाजर बीमार है,
आकर उसकी देखभाल कीजिए, परंतु यीशु तुरंत नहीं गए।
बहन व्हाइट कहती हैं कि शिष्य इस पर ठोकर खा गए।
वे आश्चर्य करते थे कि वो अपने मित्र की सहायता करने क्यों नहीं जा रहा था या मसीहा के रूप में अपनी सामर्थ्य क्यों नहीं सिद्ध कर रहा था, परंतु वो ठहरा रहा।
लाजर के पास आने में विलंब करने में मसीह का उन लोगों के प्रति दया का एक उद्देश्य था जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया था। वो ठहरा रहा ताकि लाजर को मरे हुओं में से जिलाकर वो अपनी हठीली अविश्वासी प्रजा को एक और प्रमाण दे सके कि वास्तव में वही पुनरुत्थान और जीवन है। वो उन लोगों, इसराइल के घराने की उन दीन भटकी हुई भेड़ों के लिए सब आशा छोड़ देने को तैयार न था। उनकी अप्रायश्चितता के कारण उसका हृदय टूट रहा था। अपनी दया में उसने उन्हें एक और प्रमाण देने का निश्चय किया कि वही पुनर्स्थापक है, वही जो अकेला ही जीवन और अमरता को प्रकाश में ला सकता था। ये ऐसा प्रमाण होने वाला था जिसका याजक गलत अर्थ नहीं लगा सकते थे। बैथनिया जाने में उसके विलंब का यही कारण था। द डिजायर ऑफ एजेस 5:29।
वो ठहरा रहा ताकि उन्हें ये एक और प्रमाण दे सके कि उसमें मरे हुओं को जीवन देने की सामर्थ्य है।
ये सर्वोपरि चमत्कार, अर्थात लाजर को जिलाया जाना, उसके कार्य और उसकी दिव्यता के दावे पर परमेश्वर की मुहर ठहरा।
मध्यरात्रि के पुकार के समय
प्रभु बुद्धिमान कुंवारियों को उठा रहा है। ये मुद्रांकन की प्रक्रिया का एक दृष्टांत है। मिलेरवादी मुद्रांकित किए जा रहे थे और इस प्रकार 144,000 के मुद्रांकन का एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे थे।
लाजर का पाठ ये है कि मसीह अपराधों और पापों में मरे हुए किसी व्यक्ति को लेकर उसे जीवन दे सकता है।
लाजर के प्रसंग में मसीह मृत्यु को निद्रा के रूप में परिभाषित करते हैं।
वे सब सो रहे हैं,
वो ठहरा हुआ है।
वो लाजर को पुनर्जीवित करेगा, उन्हें जीवन में ले आएगा और उन पर अपनी मुहर लगाएगा। यही उसका परम महिमामय आश्चर्य कर्म है।
हमारे इतिहास में जब वो 144,000 पर मुहर लगाता है, तब वो उन्हें एक ध्वज के समान ऊंचा उठाता है। जकरिया कहता है कि वो ध्वज मानो मुकुट में जड़े हुए रत्नों के समान है। ये उसका राज्याभिषेक कराने वाला कार्य है।
मिलेराइट इतिहास में सत्य के उंडेले जाने और उसके उद्घाटन के साथ विलंब का समय उस घड़ी को चिन्हित करता है जब प्रभु सत्य को उद्घाटित करता है।
सीढ़ी जिस पर स्वर्गदूत ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते हैं, वही वो स्थान है जहां मुद्रांकन की प्रक्रिया संपन्न होती है।
विजयी प्रवेश और मध्यरात्रि का पुकारना।
अब हम विजयोल्लासपूर्ण प्रवेश पर दृष्टि डालते हैं।
ध्यान दें कि सिस्टर व्हाइट विजयोल्लासपूर्ण प्रवेश की तुलना किससे करती हैं। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी खंड 4 पृष्ठ 250।
आधी रात की पुकार इतनी अधिक तर्क वितर्क के द्वारा नहीं फैली, यद्यपि पवित्र शास्त्र से दिया गया प्रमाण स्पष्ट और निर्णायक था। उसके साथ एक प्रेरक सामर्थ्य थी जो आत्मा को आंदोलित कर देती थी। वहां न कोई संदेह था, न कोई प्रश्न। जब मसीह की यरूशलेम में विजयोत्सव पूर्ण प्रवेश के अवसर पर देश के सब भागों से पर्व मानने के लिए एकत्र हुए लोग जैतून के पर्वत पर उमड़ पड़े, और जब वे उस भीड़ में सम्मिलित हुए जो यीशु की अगुवाई कर रही थी, तब उन्होंने उस घड़ी की प्रेरणा को ग्रहण किया और उस जय घोष को और प्रबल करने में सहायक हुए। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, Matthew 21:9। इसी प्रकार अविश्वासी भी जो एडवेंटिस्ट सभाओं में उमड़ कर आते थे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ केवल उपहास करने के लिए, उस संदेश के साथ रहने वाली दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने वाली सामर्थ्य को अनुभव करते थे। देखो, दूल्हा आता है।
विजयी प्रवेश मध्यरात्रि की पुकार का प्रतिनिधित्व करता है। आइए हम पढ़ें कि सिस्टर व्हाइट ने द यूथ इंस्ट्रक्टर February 21, 1901 में विजयी प्रवेश के विषय में क्या कहा है।
यरूशलेम में मसीह के प्रवेश का समय वर्ष का सबसे मनोहर ऋतुकाल था। जैतून का पर्वत हरियाली से आच्छादित था और उपवन विविध पल्लवों से शोभायमान थे। यरूशलेम के चारों ओर के प्रदेशों से बहुत से लोग यीशु को देखने की उत्कट अभिलाषा लेकर पर्व में आए थे।
क्यों? क्योंकि उन्होंने लाजर के विषय में सुना था।
मृतकों में से लाजर को जिलाने में उद्धारकर्ता के इस सर्वोच्च चमत्कार का लोगों पर अद्भुत प्रभाव पड़ा था, और एक बड़ी तथा उत्साहपूर्ण भीड़ उस स्थान की ओर खींची चली आई जहां यीशु ठहरे हुए थे।
अतः वो विजयी प्रवेश से पहले बैतनिया में ठहरा हुआ है। ये प्रतीक्षा के समय को संदर्भित करता है।
दोपहर आधी बीत चुकी थी जब यीशु ने अपने चेलों को बेतफगे गांव में ये कहते हुए भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ और तुरंत तुम्हें एक गदही बैंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इनकी आवश्यकता है, और वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये उसके सेवकाई काल में प्रथम अवसर था जब मसीह सवारी करने के लिए सहमत हुए, और शिष्यों ने इसे इस संकेत के रूप में समझा कि अब वो अपनी राजकीय शक्ति और अधिकार का प्रतिपादन करने वाले हैं और दाऊद के सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उन्होंने आनंदपूर्वक इस आज्ञा का पालन किया। उन्होंने उस बछेरे को पाया, उसे खोला और यीशु के पास ले आए, जो उस पर बैठ गए। जब यीशु ने उस पशु पर अपना आसन ग्रहण किया, तब वायु स्तुति और विजय के जय घोषों से भर गई। उनमें राजत्व का कोई बाहरी चिन्ह न था। उन्होंने राज्योपयुक्त वस्त्र भी धारण नहीं किए थे और न ही उनके पीछे सैनिक चल रहे थे, परंतु वो एक ऐसी भीड़ से घिरे हुए थे जो आशापूर्ण प्रतीक्षा से उद्दीप्त थी। उन्होंने अभी अभी मृतकों को जिलाया था। लोग सोचते थे कि वो इसराइल के उद्धारकर्ता बनने आ रहे हैं। ये लोग कौन थे? बहुत से लोग अपने आप को इस बात से प्रसन्न कर लेते हैं कि इसराइल की मुक्ति की घड़ी आ पहुंची है। अपनी कल्पना में वे रोमी सेना को तितर बितर और यरूशलेम से खदेड़ी हुई देखते हैं और यहूदी जाति को एक बार फिर अत्याचारी के जुए से स्वतंत्र। होंठ से होंठ तक ये प्रश्न फैल जाता है, क्या वो इसी समय इसराइल को फिर राज्य बहाल करेगा? भीड़ में बहुत से लोग भविष्यद्वक्ता के वचन को स्मरण करते हैं, हे सियोन की पुत्री बहुत मगन हो, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो धर्मी है और उद्धार से युक्त, दीन है और गधे पर सवार है। प्रत्येक व्यक्ति भविष्यवाणीगत अतीत के प्रति अपनी प्रत्युत्तर ध्वनि में एक दूसरे से बढ़कर होने का प्रयत्न करता है। पर्वत और तराई से ये जय घोष प्रतिध्वनित होता है, दाऊद के पुत्र को होशाना। मध्य रात्रि की पुकार, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, सर्वोच्च में होशाना।
उस जुलूस में न कोई शोक सुनाई दिया न विलाप, जो कभी अंधे थे परंतु जिनकी आंखें परमेश्वर के पुत्र द्वारा चंगी कर दी गई थीं, वे अगुवाई कर रहे थे। मार्गदर्शन कौन करता है? वे जो कभी लाओदीकिया वासी हुआ करते थे।
वे यीशु के निकट उमड़ पड़े और वो जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था उस पशु को आगे लिए चलता था जिस पर वो सवार था। जो कभी बहरे और गूंगे थे अब चंगे होकर आनंदमय होशान्नाओं के स्वर को और प्रबल करने में सहायक हुए। जो लंगड़े अब चलने लगे थे वे खजूर की डालियां तोड़ तोड़कर उसके मार्ग में बिछा रहे थे। कोढ़ी जो कभी समाज से बहिष्कृत था वहां उपस्थित था, उद्धारकर्ता की सामर्थ्य से शुद्ध किया हुआ। उसने अपना वस्त्र उद्धारकर्ता के मार्ग में बिछा दिया और पुकार उठा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि उसकी करुणा सर्वदा बनी रहती है। चंगा किया गया दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य वहां उपस्थित था, अब अपने सही होश में और अपनी गवाही जोड़ते हुए कह रहा था, प्रभु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, जिनके कारण मैं आनंदित हूँ। पुनर्स्थापित किए गए मृतक वहाँ थे और उसकी स्तुति कर रहे थे। विधवा और अनाथ उसकी अद्भुत क्रियाओं का वर्णन कर रहे थे। छोटे छोटे बालक, रोगों से चंगे किए गए लोग और वे जो कब्र से लौटा दिए गए थे, उद्धारकर्ता के मार्ग पर खजूर की डालियां और फूल बिछा रहे थे।
अतः यीशु निर्धन के घर में ठहरते हैं, जो ठहरने के समय की ओर संकेत करता है। क्यों? क्योंकि वो अपना पवित्र आत्मा उंडेलने और उनकी समझ खोलने ही वाला है, जो मध्यरात्रि की पुकार की ओर संकेत करता है।
इस कथा में वो एक राजा के रूप में आ रहा है, जो 22 अक्टूबर 1844 की ओर संकेत करता है। क्या यीशु 22 अक्टूबर 1844 को एक राज्य ग्रहण करने के लिए आता है? हाँ,
ये विजयी प्रवेश है और ऐसे लोग होंगे जो मध्यरात्रि की पुकार ऊंची उठाएंगे। ये लोग कौन हैं? ये वे हैं जो मसीही की सामर्थ्य द्वारा रूपांतरित किए गए हैं। मसीही की धार्मिकता का संदेश, अर्थात अंधे से दृष्टिवान, मरे हुए से जीवित और कोढ़ी से शुद्ध बना देने की उसकी सामर्थ्य, मध्यरात्रि की पुकार का पूर्वाभास कराते हुए विजयोत्सवी प्रवेश के इतिहास में वहन किया गया है। उस संदेश को क्या वहन करता है?
मसीही किस पर सवार है?
एक गधे पर। इस्लाम का संदेश ही वो है जो मसीही की धार्मिकता का संदेश वहन करता है।
1950 में प्रथम स्वर्गदूत के संदेश का सामर्थ्य इस्लाम के अवरोध से संबंधित था। प्रथम संदेश दूसरे संदेश तक ले जाता है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता।
पहला संदेश दूसरे संदेश को वहन करता है। पहले संदेश की पुष्टि तब हुई जब इस्लाम को रोका गया और इस प्रकार भविष्यवाणी पूरी हुई। इस पुष्टि ने पहले स्वर्गदूत के संदेश को सामर्थ्य प्रदान की और इसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंटों ने उसके विरुद्ध अपने द्वार बंद कर लिए।
प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं द्वारा द्वारों का बंद किया जाना इस्लाम के संदेश का अस्वीकार करना था।
मिले राइट। इतिहास हमारे इतिहास का पूर्वाभास कराता है। 1844 10,000 के मुद्रांकन काल में मसीही की धार्मिकता का संदेश, जब प्रभु अपनी पवित्र आत्मा उंडेलता है और एडवेंटवाद के लाओदीकियाइयों तथा कोढ़ियों के लिए पवित्र शास्त्रों को खोलता है, फिर से गधे द्वारा वहन किया जाता है। इस्लाम का संदेश।
1944 की गर्मियों और शरद ऋतु में ये घोषणा की गई, देखो दूल्हा आता है। तब बुद्धिमान और मूर्ख कुवारियों द्वारा निरूपित दो वर्ग प्रकट हुए। एक वर्ग जो प्रभु के प्रकट होने की ओर आनंद के साथ देखता था और जिसने उससे मिलने के लिए परिश्रम पूर्वक तैयारी की थी। दूसरा वर्ग जो भय से प्रभावित होकर और आवेगवश कार्य करता हुआ सत्य के एक सिद्धांत मात्र से संतुष्ट था, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से रहित था। दृष्टांत में जब दूल्हा आया तब जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह में चली गई। यहाँ जिस दूल्हे के आगमन का उल्लेख किया गया है वो विवाह से पहले होता है। विवाह मसीह द्वारा अपने राज्य को ग्रहण करने का प्रतिनिधित्व करता है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 427।
विजयी प्रवेश राजा का आगमन है। 22 अक्टूबर 1844 को वो राज्य को प्राप्त करता है। यही विजयी प्रवेश है।
इसी समयावधि में उन दो वर्गों को उनकी नियति में मुद्रांकित किया जा रहा है।
1945 की गर्मियों में ये घोषणा, देखो दूल्हा आता है, ने हजारों लोगों को प्रभु के तात्कालिक आगमन की अपेक्षा करने के लिए प्रेरित किया। नियत समय पर दूल्हा आया, परंतु पृथ्वी पर नहीं, जैसा लोग अपेक्षा कर रहे थे, बल्कि स्वर्ग में दिनों के प्राचीन के पास विवाह के लिए, अर्थात अपने राज्य को ग्रहण करने के लिए। जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह में भीतर चले गए और द्वार क्या बंद कर दिया गया। उन्हें विवाह में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होना था, क्योंकि वो स्वर्ग में होता है जबकि वे पृथ्वी पर हैं। मसीह के अनुयायियों को अपने प्रभु की बाट जोहनी है जब वो विवाह से लौटे, लूका 12:30। परंतु उन्हें उसके कार्य को समझना है और जब वो परमेश्वर के सामने भीतर जाता है तब विश्वास के द्वारा उसके पीछे पीछे चलना है। इसी अर्थ में कहा गया है कि वे विवाह में भीतर गए। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 427।
ठहरने के समय के विषय में शास्त्रीय संदर्भ।
कुछ पवित्र शास्त्रीय पद विलंब के समय को विशेष रूप से उभारते हैं। हम उन पर संक्षेप में विचार करेंगे और सिस्टर व्हाइट के एक कथन के साथ समाप्त करेंगे।
जब दूल्हे के आने में विलंब हुआ तब वे सब ऊँगने लगीं और सो गईं। मत्ती 25:5।
यही पर 22 मार्च 1844 विलंब के समय का उल्लेख करते हुए,
22 मार्च 1844,
बाइबल की भविष्यवाणी की कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये वो तिथि है जिसे मिलराइटों ने गलत समझा, परंतु इसी ने पहली निराशा उत्पन्न की और विलंब के समय को चिन्हित किया।
पवित्र शास्त्र ये दावा नहीं करता कि परमेश्वर विलंब का समय उत्पन्न करता है, उसे तो लोगों की गलत समझ उत्पन्न करती है। यदि दर्शन विलंब करता हुआ प्रतीत हो तो भी उसकी बाट जो है, क्योंकि वो वास्तव में विलंब नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलता।
धन्य है वो जो प्रतीक्षा करता है
और 1335 दिनों तक पहुंचता है, परंतु तू अंत तक अपनी राह पर चला जा, क्योंकि तू विश्राम करेगा और दिनों के अंत में अपने भाग में खड़ा होगा। दानियल 12:12-13।
आप इसे दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार से।
धन्य है वो जो प्रतीक्षा करता है और धन्य है वो जो 1035 तक पहुंचता है, परंतु तू अंत तक अपने मार्ग पर चलता रहे, क्योंकि तू विश्राम करेगा और दिनों के अंत में अपने भाग में खड़ा होगा।
1335 तक पहुंचने का आशीर्वाद केवल समय भविष्यद्वाणी के अंत तक पहुंचने के विषय में नहीं है। चार्ट पर 1335 का अंत 1843 में होता है। ये आशीर्वाद केवल भविष्यद्वाणी के अंत का नहीं, वरन ठहराव के समय के अनुभव का है। ये आशीर्वाद ठहराव के समय और 22 अक्टूबर 1844 के बीच घटित होता है। यही वो स्थान है जहां तुम्हें प्रतीक्षा करनी है। धन्य है वो जो प्रतीक्षा करता है।
इस कारण यहोवा प्रतीक्षा करेगा कि वो तुम पर अनुग्रह करे, और इस कारण वो उच्च किया जाएगा कि वो तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्याय का परमेश्वर है। धन्य है वे सब जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। यशाया 30:1-18।
प्रतीक्षा टैरिंग टाइम से 22 अक्टूबर 1844 तक की है। यदि आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप धन्य होंगे,
क्योंकि ये दर्शन अभी नियत समय के लिए है, परंतु अंत में वो स्पष्ट प्रकट होगा और मिथ्या न ठहरेगा। चाहे उसमें विलंब हो तो भी उसकी प्रतीक्षा कर, क्योंकि वो निश्चय ही पूरा होगा, वो विलंब न करेगा। हबक्कूक 2:3।
मिलेराइटों की भूल समझ के कारण ही विलंब का समय उपस्थित हुआ। दर्शन एक नियत समय के लिए है, 22 अक्टूबर 1844। वो मिथ्या सिद्ध नहीं होगा, परंतु भूल समझ के कारण तुम्हें प्रतीत होगा कि उसमें विलंब हो रहा है।
क्या प्रभु ने उस गलतफहमी की रचना की थी?
हाँ, सिस्टर वाइट ऐसा कहती हैं।
प्रभु ने 1843 चार्ट के द्वारा उस गलतफहमी को उत्पन्न किया।
विलियम मिलर ने कहा कि उन्होंने कभी भी निर्णायक रूप से 1843 नहीं कहा था, परंतु 1843 में भाइयों ने उनसे यदि को हटा देने और 1843 को एक मार्ग चिन्ह के रूप में अंकित करने का अनुरोध किया। सिस्टर वाइट कहती हैं कि ये एक भविष्यवाणी संबंधी मार्ग चिन्ह है। हबक्कूक 2:1। 1843 को सिद्धांत निष्ठ दृढ़ता के साथ चिन्हित करने वाले इस मार्ग चिन्ह ने विलंब का समय उत्पन्न किया।
धन्य है वे आंखें जिन्होंने उन बातों को देखा जो 1843 और 1844 में देखी गई थीं। संदेश दिया गया था और उस संदेश को फिर से दोहराने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय के चिन्ह पूरे हो रहे हैं। समापन का कार्य किया जाना ही चाहिए। थोड़े समय में एक महान कार्य किया जाएगा। परमेश्वर की नियुक्ति से शीघ्र ही एक संदेश दिया जाएगा जो प्रबल पुकार में परिवर्तित हो जाएगा। तब दानियल अपने भाग में खड़ा होगा अपना साक्ष्य देने के लिए। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस वॉल्यूम 21:437।
दानियल 12:12-13 पर ध्यान दीजिए।
धन्य है वो जो प्रतीक्षा करता है और 1335 दिनों तक पहुँचे।
धन्य है वो जो 135 तक पहुँचता है।
धन्य है वो जो 48 तक पहुंचता है, अर्थात ये पद 12 है।
पद 13।
परंतु तू अंत तक अपनी राह चला जा, क्योंकि तू विश्राम करेगा और दिनों के अंत में अपने भाग में खड़ा होगा। दानियल 12:12-13।
सिस्टर वाइट पद 12 और 13 को एक साथ जोड़ते हुए कहती हैं कि 1335 का आशीर्वाद 843 और 844 में पूर्ण होता है। ये किसी एक समय बिंदु के विषय में नहीं है, बल्कि उन लोगों के विषय में है जो मसीह के द्वारा यरूशलेम में विजयोत्सवी प्रवेश की प्रतीक्षा करते हैं, सीढ़ी पर स्वर्ग दूतों को ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते हुए पहचानते हैं और प्रभु के साथ वाचा में प्रवेश करते हैं, जब वो उन्हें वाचा की दो पटियाएं देता है।